आत्मानुशासन लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम नमः सिद्धेश। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वच्छायाणं। नमो लोए सौवसाहूणं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहम् वक्षे मोक्षाय भव्यानां। पूज्य श्री गुणभद्र आचार्य ने यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ लिखा है। उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी सहजानंद जी ने प्रवचन दिए हैं और उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 66 पर हम आगे 11 नंबर का हमने श्लोक पढ़ा था। उसमें 10 प्रकार के सम्यक्त्व का वर्णन है। उसमें जो पहला नंबर है आज्ञा सम्यक्त्व। पृष्ठ संख्या 66 पर आए हम। कल हमने आज्ञा सम्यक्त्व के बारे में पढ़ा था कि जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानकर ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है ऐसा जो स्वीकार करते हैं उनके भी केवल वो उन्होंने हाँ कह दिया उन्होंने बस हमने श्रद्धा किया ऐसा नहीं। वो भी तत्व का भावभाषण पूर्वक अंतर्मुख परिणामों में ही उनके भी सम्यक्त होगा। कंडीशन सभी वही एप्लीकेबल है परंतु बहुत सारा अभ्यास नहीं है। परंतु भगवान ने जो बताया है वही सत्य है। जैसे 6 द्रव्य है जितने अनंत अनंत द्रव्य में कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता निमित्त से कार्य नहीं होता उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट कर दिया। यानी प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय क्रम नियमित ही है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता और फिर होने वाली भी सुनिश्चित है तो फिर उन्होंने स्वीकार कर दिया। और हम कैसे कि ये कैसे हो सकता है पहले उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं या कोई ऐसा है कि बहुत विस्तार से समझने के बाद फिर उसको स्वीकार होता है तो ये कैसे जीवे अज्ञा समय बस उनकी वाणी है ना यही सत्य है दूसरा सत्य कुछ नहीं हो सकता इसको आज्ञा कहते हैं उनके उपदेश को आज्ञा कहते हैं। आज्ञा करने ने ऑर्डर देना उनकी स्वीकृति पूछ पूछ कर कार्य करना ऐसा उसका बिल्कुल अर्थ नहीं होता। आज्ञा का अर्थ ही ये है जो लौकिक आज्ञा कहते हैं वो बात अलग है। धर्म में जो आज्ञा कहने में आते हैं वो उपदेश को यहाँ कहेंगे आज्ञा। ऐसा भी आता ना गुरु की उपासना उपासना इन्हें क्या वहाँ पर भी यही है गुरु की उपासना करते उनका उपदेश सुनना यही उनकी उपासना है। उनको आरती उतारना या उनके कुछ ऐसे ये कुछ उसको उपासना नहीं कहते वो बात अलग है। परंतु ये 6 कर्तव्य बताए हैं देव पूजा गुरु उपासना उसमें गुरु की उपासना क्या अर्थ होता है उनकी उनका उपदेश सुनना या उनकी आज्ञा में रहना अर्थ एक ही होता है। आज्ञा में रहना का भी अर्थ उसके कि उनके द्वारा उपदेश का ग्रहण करना। अभी हम 66 पेज पर 2 नंबर का जो प्रकार है उसको पढ़ेंगे यहाँ से। मार्ग सम्यक्त्व पहला कौन सा देखा आज्ञा सम्यक्त्व। अब यह मार्ग सम्यक्त्व में साधु मार्ग के दर्शन का प्रभाव। दूसरा है मार्ग सम्यक्त्व जैन सिद्धांत के मार्ग में त्याग और तपस्या की प्रधानता है। अहिंसा का जितना पालन ये साधुजन करते हैं वह पालन किए जाने वाली अहिंसा का उत्कृष्ट रूप है। भोजन का कोई साधन साथ में न रखना यह अहिंसा का ही एक उत्कृष्ट रूप है। किसी भी परिस्थिति में अपने हाथ से भोजन न बनाना और श्रावक के घर भी यदि यह जान जाए इसने केवल मेरे लायक ही और मेरे लिए ही आहार बनाया है तो उसे भी नहीं लेते। तो ये सारी उनकी चर्या देखकर भी इतना प्रभाव पड़ जाता है जीवों पर, उसकी बात है यहाँ मार्ग संबंध में। जैसे जिन बिंब दर्शन होता है वैसे साधुओं का जो मार्ग वो आचरण कर रहे हैं तो उसको देखकर उसका भी प्रभाव पड़ता है, उसकी बात है यहाँ। सब घर के लिए बन रहा हो उसमें से कुछ ले लेना, यह सब अहिंसा का ही तो एक उत्कृष्ट रूप है। आज ऐसे ही कोई पुस्तक मिले हाथ में, कुछ विशेष पुरुषों का वर्णन था, शांति सागर महाराज के बारे में बहुत सारी उसमें बातें लिखी थी। कहीं आए, कहीं किसी गांव में गए, वहाँ सेवक का एक ही घर था तो उन्होंने वहाँ आहार ग्रहण नहीं किया क्योंकि ये तो जो बनेगा तो उन्हीं के लिए बनेगा। बहुत सी ऐसी बातें थी कि कई ऐसी उन्होंने कुछ जिसको अभिग्रह कहते हैं ना, कि मिट्टी के बर्तन पर कोई नारियल रखा हुआ कोई पड़ जाएगा तो मैं भोजन करूँगा, तो 6 दिन का उपवास हो गया। किसी गरीब ने चाहा कि उनको अपने यहाँ भोजन इन्हें आहार करावे तो उसके पास तो कुछ नहीं था, मेटल का बर्तन भी नहीं था, उसने मिट्टी के कलश पर वो रखा था नारियल, तो उनके वो तो सहज रूप से हो गए। यानी बहुत सारी उसमें बहुत सारी यानी 50 जितनी अलग अलग बातें बताई है, ये कहते ये ऐसी बातें देख कर उसका प्रभाव पड़ता है, ये कहना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति ये पढ़ा हमने, जिसमें मेरे निमित्त से किसी को बाधा न हो, पूर्ण सत्य व्यवहार होना, यह अहिंसा का ही रूप है। चोरी का तो कोई काम ही नहीं है, कदाचित कोई चीज चुराए भी साधु तो वह उसे धरेगा कहाँ, उसके पास धरने के लिए छिपाने के लिए कुछ भी तो नहीं है, उनका तो केवल शरीर मानो परिग्रह है। पीछे कमंडल और शास्त्र शुद्ध संयम के लिए रखते हैं, कुशील की तो वहाँ कोई बात ही नहीं है, प्रकट नग्न है, खोटे परिणाम करे तो वे सब विकार दृष्ट हो जाएंगे, फिर उसकी साधुता टिक नहीं सकती। कितना शील का एक व्यक्त रूप है वह, परिग्रह का भी कोई साधन नहीं है, त्याग भी सबका किया है, कैसा उत्कृष्ट है साधुओं का मार्ग। श्रावक मार्ग के दर्शन का प्रभाव व निश्चय मार्ग की रुचि। श्रावक जनों का मार्ग भी कितना पवित्र है, इन्हें यहाँ पवित्र है वह प्रश्न चिन्ह नहीं चाहिए, उद्गार चिन्ह चाहिए, इन्हें पवित्र है वो बता रहे हैं। रात्रि भोजन श्रावकों में नहीं होता क्योंकि वह हिंसा का साधन है, साथ ही निशा भोजन से, निशा है रात्रि भोजन, परिणामों में मलिनता उत्पन्न हो जाती है, जल में सूक्ष्म अनेक जंतु बताए गए हैं, कोई जल बिना छाने नहीं पीते। भगवान की भक्ति में देव शास्त्र गुरु की उपासना में सावधान रहते हैं और आगे चलो तो प्रतिमाओं का वो लिखते हैं, वो भी नहीं लिखते, व का पो हो गया, प्रतिमाओं का हम ओ कर देंगे उसको, प्रतिमाओं का रूप क्रम से कैसा है, दर्शन प्रतिमा में किस प्रकार का त्याग है, त्याग में बढ़े तो कैसा क्रम क्रम से बढ़ते हैं, इन सब का वर्णन सुनकर और इस मार्ग को आँखों से निरख कर सहसा श्रद्धा उत्पन्न होती है। ओ उद्धार का मार्ग है तो यह है, निश्चय से आत्म तत्व का श्रद्धान ज्ञान आचरण मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार के मार्ग को निरख कर जो सम्यक उत्पन्न हो उसे मार्ग सम्यक कहते हैं। पहले निश्चय से कौन सा है, आत्म तत्व का श्रद्धान ज्ञान आचरण, वो तो मुख्य है ही है, परंतु वो जिसको होता है उसके पहले ऐसे जो जीव है अन्य उनसे प्रेरणा मिलती है तो उसके बाद इनको हुआ, इसलिए मार्ग सम्यक तो कह दिया। क्या कहते हैं, मार्ग को निरख कर जो सम्यक होते, केवल देखते रहने से नहीं होगा, होगा तो तत्व विचार से ही होगा, परंतु इससे उनको बहुत अधिक दृढ़ता से वो बात ख्याल में आती है। किसी भी प्रकार से सम्यक तो हो। आखिर सम्यक तो में अंतः बात सब में एक ही आती है। बात बताइए ना, ये तो बाह्य निमित्त की बात है, यहाँ पर अंतरंग में तो सबकी बात एक ही होगी। जो अंतरंग में कैसे जो विचारधारा तत्व निर्णय अंतर्मुख परिणाम करण लब्धि वो सब सबके समान है, ये तो बाह्य निमित्तों की अपेक्षा बाह्य किस कारण से वो अंतर्मुख हुए आदि बातें हैं, उसकी बात चल रहा है, यहाँ चल रही है। तीसरा और चौथा, उपदेश सम्यक्त्व और सूत्र सम्यक्त्व। हाँ, उपदेश सम्यक्त्व तीसरा प्रकार बताया है। तत्व उपदेश सुनकर तत्व के संबंध से श्रद्धा होना, पुराण पुरुषों के चरित्र सुनकर प्रथमान योग सन्मार्ग में झुकाव होना, यह उपदेश सम्यक्त्व है। वहाँ जो आज्ञा सम्यक्त्व में तो उसने तो सरल जीव है, जो वचन है बस बिल्कुल यही है ऐसा मान लेता है, और यहाँ पर नहीं, वो भगवान का उपदेश, भगवान का उपदेश मानकर ही वो गुरु से सुन रहा, शास्त्र में हो या कोई वक्ता का हो, ये तो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है ऐसा कह के वो सुन रहा है, भगवान ने ऐसा ही कहा है। हम ऐसा देखते हैं ना, भोले जीव ऐसा भी है कि गलत उपदेश सुनकर भी ये भगवान का सुनाया हुआ ऐसा मानकर उसको श्रद्धा करते हैं। ये जो आम जनता की बात पाई जाती है, हाँ, तो वो उन्होंने ये माना कि नहीं ये भगवान का उपदेश, एक भगवान ने ऐसा कहा ऐसा उनको लगता है, तो भूल होती है तो उसमें तो समय तो नहीं हो रहा है, उनके तत्वों के बारे में भूल है तब तक तो नहीं होगा, परंतु उनकी श्रद्धा कैसे, नहीं नहीं ये तो भगवान की वाणी है, उसमें सही उपदेश भी मिल जाए उसको और ये भगवान की वाणी है, फिर उसमें कोई डाउट नहीं होता, उसको संशय नहीं होता, वो भी तत्व विचार से ही उसको सम्यक्त होगा। उन्होंने बताया कोई भी सम्यक्त होगा प्रकार, उसमें अंतरंग की बात सबके लिए समान है, तत्व विचार तत्व निर्णय और अंतर्मुख परिणाम। देखो ये तत्व उपदेश सुनकर, अभी तत्व उपदेश आने में तत्व के बारे में खास उपदेश सुन रहा है, तत्व के संबंध से श्रद्धा होना, पुराण पुरुषों के चरित्र सुनकर सन्मार्ग में झुका होना, यह उपदेश सम्यक्त्व है। हाँ बोलो। तो उसको सम्यक तो अगर वो गलत मान रहा है किसके बारे में, प्रयोजनभूत तत्वों के लिए गलत मान रहा है तो उसको सम्यक तो नहीं होगा, परंतु ऐसे कोई करना नहीं कि कोई बात होगी उसके बारे में जो आता है ना, गाथा आती है घुमड़सार में, अजान मानो गुरु नहीं होगा। जैसे मुझे मनुष्य के कितने भाव होते हैं, अभी त्रस पर्याय में उसके बारे में कुछ उसने गलत सुना है, ये जीव मरने के बाद ऊपर ही जाता है, गलत सुना है तो उसके लिए बाधक नहीं है, परंतु अगर कोई शास्त्र बताकर उनको बतावे ये बात आप जो कह रहे हो वो झूठ है और आगम में ये बात है, फिर भी अगर वो हट चालू रखे तो वो तो मिथ्या, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि हो जाता है उसी क्षण उसी समय में। प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में कोई गलत मानेगा तो उसकी तो भूल ही भूल है। हाँ, लास्ट लाइन, सूत्र सम्यक्त्व, जो तत्वज्ञान के पोषक सूत्र है, गाथाएं हैं, उन सूत्रों को ही सुनकर, ये डायरेक्ट सूत्र सुनकर, ये तो ये दूसरा लिया कि तत्वों का उपदेश सुनकर है, थोड़ा सा डिफरेंस किया उसने, उन सूत्रों को ही सुनकर, श्रमणाचार प्रतिपादक आचार सूत्रों को सुनकर, श्रमणाचार्य ने मुनियों के जो आचार संबंधी जो गाथाएं हैं मूल सूत्र है भगवान की बताई और गंधर्व के द्वारा लिखी गई, उनको सुनकर, उनका मर्म जानकर सम्यक्त होना, तो सूत्र ज सम्यक्त्व है। ओरिजिनल सूत्र जानकर ही उनके हो जाता है, किंतु उनके वो ज्ञान में आ जाती है बात, ज्ञान में आती है तो वो तो अंतरंग उपयोग वगैरह सब ले लेना।
तो हम तो खाली सूत्र ही जानते हैं,
वो सूत्र जो जान रहे हैं, कहाँ जाने आपने सूत्र? वो क्या ओरिजिनल रचे हुए सूत्र जाने के बाद में रचे हुए सूत्र जाने? अगर सूत्र जानकर होना है तो सही घटित होगा, तो फिर इतने कंफ्यूजन क्यों? वो सूत्र ही नहीं सही है और उसका अर्थ भी नहीं सही है। हमने माना कि यह ओरिजिनल सूत्र है, तो वो ओरिजिनल भगवान के सूत्र है नहीं, बाद में
हाँ
कौन सा, क्या नाम जो है बारसा सूत्र, जो अभी हम षटखंडागम के जो सूत्र देख रहे हैं वो ओरिजिनल है। तत्वार सूत्र, मगर वो तत्वार सूत्रों का अर्थ सही, प्रत्येक का अर्थ सही घटित नहीं होता है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता, हाँ हम तो मानते हैं द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, उसके पर्याय का करता है, ऐसा कहने वाले हमने उनके तत्वार सूत्र के टीका में लोगों ने हमको बताया, अमेरिका गए थे वहाँ, देखो यहाँ ऐसा लिखा है, तो ये सूत्रों का अर्थ गलत किया है, समझे? वो सही होना चाहिए, उनका मर्म जानकर।
अभी आप जो बता रहे भाषा सूत्र नामक कोई ग्रंथ है, पर वो ग्रंथ सर्वज्ञ से चलता हुआ आया नहीं है, तो वो ओरिजिनल नहीं है, सर्वज्ञ कथित नहीं है, जो क्योंकि जो सर्वज्ञ को मानते ही नहीं, सर्वज्ञ का स्वरूप गुरु का स्वरूप, उसमें गलती करते हैं, तो उनको सम्यक्त्व भी नहीं है, तो लिखे हुए व्यक्ति सम्यक्त्व भी नहीं है, भले आप कुछ भी कहो उसको। हमने हमारे बेटे का नाम महावीर रखा, हमने हमारे बेटे का नाम महावीर रखा, तो क्या वो महावीर भगवान हो गया क्या? नाम हम भले आचार्य कहेंगे हमारा या महाराज कहेंगे, लेकिन वो उस कैपेसिटी की व्यक्ति है कि नहीं ये देखना चाहिए ना, ऐसा मैं कहता हूँ। यानी आप जो बता रहे हैं कि भाषा सूत्र
पढ़ा जाता है ज्यादातर, तो उसमें ये सब ये बात ही आती है पुराण शास्त्रों के, जो भी करो का ही आता है।
देखो भाई, बात ऐसी होती है, जो हीरे का व्यापारी होता है और उसमें ठगाने वाला अपना भी कुछ माल मिक्स कर देता है ना, जल्दी श्रीमंत हो जाए, इसलिए ऐसी बात है। चलो
हाँ, देखो सूत्र समय से जो तत्व ज्ञान के पोषक सूत्र है, गाथाएं, उन सूत्रों को ही सुनकर, श्रमणाचार प्रतिपादक आचार सूत्रों को सुनकर, ये आचारांग में जो बताया है मुनियों के आचार संबंध, तो 28 मूल गुण है, वो नग्नत्व है, वो सब निष्परिग्रह, वो तो सब लागू होगा उसमें, उसका मर्म जानकर, ये केवल बाह्य आचार की बात नहीं है, अंतरंग में जो स्थिरता है सम्यक्त्व प्राप्त करने की बात है, सम्यक्त्व होना सो सूत्र जो सम्यक्त्व है। तत्वार सूत्र एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कोई यदि यह पूछे कि जैन सिद्धांत में सबसे प्रसिद्ध कौन सा ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके पूरा ज्ञान कर सके, तो इसका उत्तर तो यह है, जैन सिद्धांत में कोई एक ग्रंथ मुख्य नहीं बताया जा सकता, सभी ग्रंथ मुख्य है। कारण यह है कि वस्तु स्वरूप का बहुत विस्तार है, किस किस विषय को लेकर प्रतिपादन किया जाए, अध्यात्म विषयों के ग्रंथ अध्यात्म ढंग के मुख्य है, उसमें अध्यात्म की बात मुख्यता से बताई जाती है, जो आगम के ग्रंथ है 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया जाता है, जीव का कर्मों का सब बताया जाता है, एक तो अध्यात्म ने आत्मा के अनुभव की मुख्यता से बात अलग बात होती है, वहां तो किसको मुख्य करना क्या है वो बात होती है, और एक होता है आगम, आगम में तो ज्ञान सभी की बात होती है, ज्ञान अपेक्षा पूरा बताया जाता है, तो अध्यात्म ढंग के मुख्य है। तीन लोग तीन काल की बातें प्रकट करने वाले ग्रंथ। अभी तीन लोग तीन काल के नहीं, वो तीन लोग के नहीं, वो पूरे त्रिलोकसार आदि भी सब आ गए ना उसमें। तीन काल की बातें नहीं, सर्वज्ञ ने बताई हुई बातें जो है उसमें, वो कर्म थियरी भी आ जाएगी अनेक, उस विषय के मुख्य है। चारित्र का निरूपण करने वाले ग्रंथ उस ढंग के मुख्य है, और पुराण पुरुषों का वर्णन करने वाले ग्रंथ अपनी दिशा के बहुत निराले और प्रामाणिक है। यानी यहाँ अध्यात्म विषय की बात बताई, द्रव्यानियोग मुख्यता, फिर कर्णानियोग, चरणानियोग और यहाँ प्रथमानियोग। किन ग्रंथों का नाम लिया जाए कि जैन सिद्धांत के प्रतिपाद्य विषयों का जो प्रतिनिधित्व कर दे, फिर भी बहुत कुछ समता लेकर प्रधानता बताने का यत्न किया जाए तो यह कह सकते हैं एक तत्वार सूत्र व दूसरा समयता। यद्यपि इतने में सही सभी समस्त विषय नहीं आ सकते, न सभी विषयों का दिग्दर्शन हुआ, फिर भी बहुत कुछ पूर्ति प्रतिपाद्य विषयों की इन दोनों ग्रंथों से हो जाती है। कम से कम शब्द लिखकर कितना महान अर्थ प्रकट किया है। नहीं, ये एक वाक्य रह गया, तत्वार सूत्र, सूत्र में एक एक शब्द कैसे कैसे मर्म को प्रकट करता है। ये सूत्र उसी को कहते हैं, कम से कम अक्षरों में, शब्दों में भी नहीं, कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक उसमें से मर्म निकल सकता है, उसको सूत्र कहते हैं। यहाँ लिखा ना, कम से कम शब्द लिखकर कितना महान अर्थ प्रकट किया है। ऐसा जब सूत्र विषयक मर्म का ज्ञान होता है तो सहसा सम्यक्त्व दृष्ट होता है। बीज सम्यक्त्व और विस्तार सम्यक्त्व। एक है बीज सम्यक्त्व। बीज रूप किसी शब्दों को सुनकर एक बहुत विस्तृत मर्म जानने में आता है, वहाँ जो सम्यक्त्व हो उसको बीज रूप अर्थ है। नहीं, वो कोई ऐसा एक शब्द, उस वो तो अक्षर या शब्द वो पूरे बहुत विस्तार को बताने वाला होता है तो उसको भी बीज कहेंगे। या अथवा दुर्गम गणित पूर्ण कर्णान योग के बीजों की महिमा जानकर, ये कर्णान योग के अत्यंत कठिन विषय है, गणित विषय भी जो है, तो उसको जानकर, वो सूक्ष्म विषय को भी जानकर, उसकी महिमा जानकर कर्णान योग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें तो सचमुच ज्ञान की और केवल ज्ञान की महिमा आती है। नहीं तो खाली हम केवली केवली सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। जानकर जो सम्यक्त हो उसे बीज सम्यक्त कहते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई दो राय नहीं, टू और टू दो चार ही, दो और दो चार ही होने वाले हैं, उसमें कोई अन्य उसमें उत्तर निकलेगा ही नहीं। तो ये हो गया बीज सम्यक्त। विस्तार सम्यक्त वही है, एक शब्द से बहुत विस्तार से जानने। एक है संक्षेप सम्यक्त्व। किसी प्रतिपाद्य विषय को, प्रतिपाद्य ने जो विषय बताया जा रहा है वो प्रतिपाद्य विषय, अति संक्षेप में सुनकर सम्यक्त्व होना। अभी वैसे हमने देखा था धवला में बहुत बातें विस्तार रुचि वाले और संक्षेप रुचि वाले, ऐसे बहुत बात आती है। यानी किसी शिष्य ऐसे होते उनको विस्तार से खोलकर समझाया जाए तो समझ में आते, और कोई ऐसे होते कि बस शॉर्ट में बता दिया तो एकदम ख्याल में आता है, ऐसा क्यों कह दिया, उनको पूरा खोल के बताने की जरूरत नहीं। अभी सुबह हम देख रहे हैं ना, अंतर है, काल है, तो थोड़ा बता दिया तो कैसे हो सकता है ये, किसी को बहुत सारा विस्तार से समझाएं तो समझ में आता है, और किसी को वो उसके समझ जाता है उसको कि उसने ये कह दिया तो उसका पूरा उसका पीछे का रहस्य समझ में आ जाता है, वो है संक्षेप रुचि वाले। तो यहाँ पर भी संक्षेप में समझ जाते हैं। एक है संक्षेप सम्यक्त्व। किसी प्रतिपाद्य विषय को अति संक्षेप में सुनकर सम्यक्त होना। कोई तो बड़े बहुत ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ते चले जाए फिर भी समझ में नहीं आता, और कोई एक वो मूल गाथा ही सुन ली उन्होंने, कोई शॉर्ट में बता दिया वो समझ लेता है, उसका पूरा रहस्य ख्याल में आता है। जो संक्षेप के रुचियां लोग हैं, ये है ना संक्षेप रुचि वाले, वे उस सूक्ष्म रूप को जब उपयोग में लेते हैं तो उससे उनकी दृष्टि निर्मल होती है, क्योंकि उपयोग उसमें लगा है तो उपयोग भी सूक्ष्म होता है और वो ज्ञान की भी निर्मलता स्पष्टता होती है। एक विस्तार सम्यक्त्व, वो सम्य बराबर लिखना है, बीच में तो आ गया। एक है एक विस्तार सम्यक्त्व है, द्वादशांग शंग हुआ है, द्वादशांग रूप वाणी को सुनकर जो सम्यक्त्व होता है, अथवा बहुत विस्तार से वर्णन सुनकर जो सम्यक् दर्शन होता है, वह विस्तार सम्यक्त्व है। अभी आप कहेंगे उपदेश में भी उसने, किसी ने संक्षेप में सुना, किसी ने विस्तार, उसकी के भेद है? हाँ भेद है ना, ये तो अलग अलग नामों से पहचाने जाते हैं, वैसे सारे सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व ही, उसमें कोई भेद नहीं है। एक अर्थ सम्यक्त्व है, सूत्रों का, गाथाओं का, मूल रचनाओं का अर्थ ही सुनकर, अथवा अर्थ के संबंध से उनका स्वरूप जानकर जो सम्यक्त्व होता है, उसे अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व का अर्थ है समीचीनता, यानी यथार्थता। सम्यक् किसको कहेंगे? यथार्थ, सही, समीचीन। समीचीनता का अर्थ है जहाँ दोष न रहे, विपरीत आशय न रहे, उसे सम्यक्त्व कहते हैं। अभी तक हमने कौन कौन से देखे? देखो, पहला हमने आज्ञा सम्यक्त्व, फिर मार्ग सम्यक्त्व देखा, फिर उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, उसके बाद बीज सम्यक्त्व, विस्तार और संक्षेप, और अर्थ सम्यक्त्व, आठ हो गए ना। अब ये अभिप्राय जो विपरीत अभिप्राय से रहित, तो कौन से ऐसे विपरीत आशय हो सकते? आशय करते अभिप्राय, मान्यता। विपरीत अभिप्राय अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे ये समस्त द्रव्य भिन्न है, उन्हें यह जीव मानता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह विपरीत आशय है। समयसार में मूल गाथा में बताया है कि ये जीव अज्ञानी कब तक रहता है? जब तक ये कर्म और कर्म नो कर्म में, यह मैं हूँ, ये मेरे है, ऐसी मान्यता रहती, तब तक ये अज्ञानी है। कर्म में, कर्म के उदय में होने वाले सभी बातें लेना, क्योंकि कर्म दिखता ही नहीं तो उसको मैं हूँ कैसा मानेगा जी? तो कर्म के उदय में शरीर मिला तो यह मैं हूँ, वो नौकर्म में भी आ गया, परंतु कर्म के उदय में राग द्वेष भी हो गए, वो भी मैं हूँ, ये जो मान्यता सारी है उसकी। फिर पढ़ते, जैसे ये समस्त द्रव्य भिन्न है, अभी यहाँ भिन्न द्रव्यों की बात है, शरीर भी भिन्न द्रव्य है, उन्हें यह जीव मानता है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह विपरीत आशय है। ये समस्त परद्रव्य अहित रूप है, इनके संबंध से आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्या कहा? ये पदार्थ अहित रूप क्यों कहने में आते हैं? पदार्थ तो पदार्थ है, परंतु हमने उनको मेरा माना, उनको देख देख कर ये मान्यता हो रही है, इसके उपचार से उनको अहित रूप कह दिया। अहित क्या है? ये हमारी मान्यता अहित रूप है। पदार्थों ने थोड़ा ही कहा मुझे मेरा मानो, ये घर थोड़ा ही हम घर पीछे लगाए कि तुम कहो मेरा घर है, मेरा घर है, ये हम ही ऐसे कि ये मेरा है मान रहे, तो ये हमारी मान्यता हमारे लिए अहित रूप है, फिर भी कहेंगे परद्रव्य अहित रूप है। ये पदार्थ, ये समागम जब भी कारण बनेंगे तो आकुलता के ही कारण बनेंगे। तो कहते मुनियों को भी बनना चाहिए आकुलता के कारण, तो कहते उनके तो वो मिथ्या तो चला गया है और बाकी भी राग द्वेष कीन हो गए एकदम। तो ये हमारा मोह ऐसा है कि यही आकुलता का कारण, फिर भी हम यहाँ आरोप करेंगे परद्रव्य पर। शांति का कारण तो अपने आप के आत्मा का अवलंबन है, और हम किसका अवलंबन है? परद्रव्यों का, और परद्रव्यों का अवलंबन है, आत्मा का अनुभव नहीं है तो अशांति होनी ही होनी। शांति तो आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगी, दुख भी आत्मा के आश्रय से होता है, पर उसमें विषय परद्रव्य होते हैं, आश्रय परद्रव्य का होता है, प्रकट आत्मा से होता है। नहीं समझे? दुख कहाँ से प्रकट हो रहा है? परद्रव्य से। दुख किसकी पर्याय है? दुख पर्याय किसकी? आत्मा की है कि पुद्गल की है? दुख पर्याय किसकी है? जिसको दुख हो रहा है क्या? दुख पर्याय किसकी है?
आत्मा की भी नहीं है।
आत्मा की है, सुख गुण आत्मा का है, उसके विभाव पर्याय है। आत्मा में उत्पन्न हुआ है ना दुख, दुख किसको फील हो रहा है, शरीर को कि आत्मा को, बोलो। ये शरीर में ज्ञान ही नहीं है, ना उसकी सुख है ना दुख है, जीव को आत्मा को ये हो रहा है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, प्रकट आत्मा से होता है, यानी दुख या आत्मा की पर्याय, क्योंकि आत्मा को वेदन हो रहा है, दुख का वेदन किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। आत्मा दुखी है, वे क्यों दुखी है वो बात अलग है, परंतु दुख उसमें उत्पन्न हुआ है, उसने स्वयं भूल की है, ये परद्रव्य मेरा मान लिया है, इच्छा उत्पन्न हो रही है और इसलिए वो दुखी है, विपरीत मान्यता से दुखी है, दुखी स्वयं, किंतु आनंद और शांति आत्मा से प्रकट होती है। यहाँ क्या कहता, दुख में विषय कौन है, परद्रव्य, क्योंकि आश्रय परद्रव्य का था, और आनंद और शांति आत्मा से प्रकट होती है, आत्मा के गुण है, उसका जो स्वभाव परिणमन है आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होती है। विपरीत आशय को संक्षेप में, ये पृष्ठ संख्या 68 पर आ गए, तीन प्रकारों में रखा है, किसको ये विपरीतता जो है ना, वो विपरीतता तीन प्रकार से बताएंगे, किस किस में विपरीतता कर रहा है ये जीव, एक स्वरूप विपर्य, दूसरा भेदाभेद विपर्य और तीसरा कारण विपर्य। ये जो ज्ञान, जो मिथ्या ज्ञान है, वो उसके तीन प्रकार बताए जाते हैं, संशय विमोह अनध्यवसाय जो बताते हैं, ये जो विपर्य जो बताते हैं, विपरीतता किस किस में है उसकी, स्वरूप के बारे में विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, ये गुण द्रव्य भेद है कि अभेद है कि कैसे है, वो सब भेदाभेद विपरीतता, और एक कारण विपरीतता, कारण विपरीतता में वो निमित्त ही सब कार्य कर रहे हैं, परद्रव्य मेरा सब कुछ कर रहा है, कर्म ही मेरे को रुला रहा है, भगवान ही मेरा भला कर दे रहा है, ये क्या है सब कारण विपरीतता बताएंगे वो दीदी इस तरह। स्वरूप विपर्य, ये बहुत महत्व के विषय है, स्वरूप विपर्य, तो स्वरूप में उल्टी बात समझना है, जैसे अपना स्वरूप और पर का स्वरूप, स्वरूप के बारे में सब उल्टा मान रहा है, जान रहा है, जैसे जीव है तो चेतन, और माने भौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु से यह जीव प्रकट होता है, ऐसा मानना स्वरूप विपर्य है। अन्य मति मानते हैं ये पांच महाभूत से ये जीव उत्पन्न हुआ, ये क्या है, स्वरूप विपरीतता, यानी वो जड़, यही जड़ ही मैं हूँ, ये तो स्वरूप विपरीतता है। और जब पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाए, जल अग्नि वायु अपने अपने स्वरूप में मिल जाए, इसका ही नाम मरण है, ऐसा भी एक सिद्धांत कहता है। यानी ये सारे जो तत्व है, पृथ्वी यानी वो सॉलिड जो कुछ है, पानी यानी लिक्विड है, वो अग्नि, जिस सिद्धांत को चारुवाक सिद्धांत कहते हैं, चारुवाक यानी चारुवाक, यानी मीठा लगता है ना, अच्छा लगता है, वो क्या कहते हैं, अभी जब तक वो तो है, खाओ पियो मिजा करो, ऋणम कृत्वा घृतम पी दे, समझे कि नहीं, ऋण क्या समझते हैं, कर्जा निकालो और घी पियो, यानी मिठाई खाओ, क्योंकि ये मरण के बाद किसने क्या देखा, ये उनका सिद्धांत है। देखो चारु मायने मीठा, वाक मायने वचन, जिस हाँ चार वाक, जिसके वचन संसारी जनों को मीठे लगे, प्रिय लगे, क्योंकि सबको चाहते हैं ना कि सब भोग भोग ले, उसे चारुवाक कहते हैं। यानी पहले में पहले भोग लो, ऋण निकाल के भी पहले भोग लो, अभी अभी ऐसी पद्धति आ गई है ना, इंडिया में भी ऐसे हुए, पहले तो थे अमेरिका में सुनते थे, अभी तो यहाँ पर भी है, क्या सारे कर्जे निकालो इंस्टॉलमेंट पर, घर ले लो, गाड़ी ले लो, सब ऐसा चमचमाट कर दो कि लोगों का, अरे कितना पैसा है इसके पास, अंदर कुछ नहीं, जीरो है, और महीने के महीने वो कर्जा चुकाते जाओ। यहाँ क्या लिख रहे, संसारी जनों को मीठे लगे ये भी। अरे अरे वाह, अभी तो अभी वो गया वहाँ अमेरिका में, कैसा घर है उसकी, कैसी कार है, कैसी अच्छा दिख रहा है ना। तो देख देख के यहाँ के लोगों को भी वो पाने की इच्छा हो जाती है। संसारी जनों को मीठे लगे, प्रिय लगे, उसे चारुवाक कहते हैं। धर्म की बात संसारी जनों को अप्रिय लगती है, कठिन लगती है, क्योंकि वो धर्म क्या है वो भी सुना नहीं। सच्चा धर्म क्या है, धर्म के नाम पर क्या सुना, इतना उपवास करो, ऐसा दान दो, बस वो कठिन लगता है। और गप्पे विषय कशा है, भरी बातें बड़ी रुचकर लगती है, यह है कि नहीं है। ये दुनिया में क्या ज्यादा चलता है, गप्पे विषय कशाई की बातें, दूसरों की जो कुछ चल रही है निंदा करना, ये सब अच्छा लगता है। जो यह प्रतिपादन करे कि जीव से अलग सत कुछ नहीं है, यह तो भौतिक रूप है, भौतिक यानी सब पौद्गलिक है, जो बाहर में दिखता है वो सब भौतिक है, पौद्गलिक है, ये जब तक ठीक ठिकाने मिले हुए है तब तक जीव है। जब ये बिखर जाते हैं तो जीव कहाँ रहता है, जीव नाम की कोई चीज ही अलग नहीं है। ये कौन कह रहे हैं, वो चार वाक, नहीं तो आप समझे ऐसे उल्टा कह बता, फिर से सुनो अभी। वो चार वाक क्या प्रतिपादन करते हैं, देखो जो है ना चार वाक, हाँ वो ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि जीव से अलग सब कुछ नहीं है, यह तो भौतिक रूप है, ये जब तक ठीक ठिकाने मिले हुए तब तक जीव है। ये यानी कौन, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये सब मिलकर जीव बने हैं। जब ये बिखर जाते हैं तो जीव कहाँ रहता है, वो तो रहता ही नहीं, नष्ट हो जाता है। जीव नाम की कोई चीज ही अलग नहीं है, तब क्या करना, खूब मजे से खाओ पियो, घी शक्कर की कमी न पड़े, चाहे कर्जा लेकर खाना पड़े। जब वह देह भस्म हो जाएगा तो कहाँ जीव है। आगे क्या है, ऋणम कृत्वा धनंति देव, नहीं नहीं उसके पहले के दो वाक्य बस, ये जो भस्मीभूत की बात है ना, भस्मीभूत है, इसे दो वाक्य पहले है और फिर बाद में लिखा है उन्होंने ऋणम कृत्वा धनंति देव, तीन चार लाइन है मेरी याद थी पहले। ये भस्मीभूत देह हो जाएगा वगैरह वगैरह पहले बातें हो गई लिखी उन्होंने, और बाकी कहते खाओ पियो बस मजा कर। उसी का उन्होंने ट्रांसलेशन, देह भस्म हो जाएगा तो कहाँ जीव है, परभव का यहाँ डर लगा दिया है, कहाँ परभव है। वो क्या कहते हैं, परभव कहाँ है ही नहीं, बस जी तो इतना है, बस इतना ही है तुम्हारा अस्तित्व। खूब मौज में खाओ पियो, ऐसी प्रेरणा मिलती है, इस उल्टे प्रतिपादन से इस आत्मा का अहित है और जीव उसके चपेट में आ जावे, क्योंकि उनको अंदर से विपरीतता पड़ी है और ऐसे सुनकर और विपरीतता हो जाती है। ये स्वरूप विपरीतता बता रहे, अभी स्वरूप विपरीत जितने जो अन्य मत है वो सारे स्वरूप विपरीतता के बारे में, स्वरूप ही कुछ अन्य मान लिया उन्होंने, ऐसा मान लिया कि ऐसा पूरे विश्व में व्याप्त होने वाला एक है और ये सारे जो जीव है वो ईश्वर के अंश है, वो क्या है, स्वरूप विपरीतता ही तो है। अब भेदाभेद विपरीतता को बता रहे हैं, भेद को अभेद करने रूप भेदाभेद विपर्य, विपर्य ने उल्टा, जो है वही उससे उल्टा मान लेना, विपरीत। तो दूसरा विपर्य बताए हैं, भेदाभेद विपर्य, जो चीज भिन्न है उसे अभिन्न बताना और जो अभिन्न है उसे भिन्न बताना, यह भेदाभेद विपर्य है। भिन्न है उसे अभिन्न, मेरे देह और ये जीव वो एक ही है, वो अभिन्न बताया, और जो अभिन्न है उसको भिन्न बताने का अर्थ क्या, कोई ऐसे मानने वाले हैं, ज्ञान जुदा है और ज्ञान का उसके साथ संयोग हो जाता है, फिर वो जानने लगता है, समवाय होता है। तो फिर एक खंभे में भी ज्ञान जाके मिलेगा तो खंभा भी जानने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब ये क्या बताते देखेंगे आप, जैसे जीव से राग न्यारा है, राग द्वेषादिक भाव जीव के स्वरूप में नहीं, स्वरूप की बात है, देखो पर्याय में हो रहे, परंतु जीव में इतने अनंत शक्तियां हमने गिनी, अनंत गुण है, कितने जितने आकाश द्रव्य के प्रदेश है उनसे भी अनंत अनंत गुणे प्रत्येक द्रव्य में कहो जीव में कहो गुण है। एक ऐसा एक भी गुण नहीं है कि जो राग द्वेष करे, फिर भी राग द्वेष हो रहे पर्याय में। हम यही तो एक चैतन्य कहने से उसमें सारे अनंत शक्तियों का उसमें आ गया, क्योंकि वो लक्षण है, वो पूरे आत्मा का लक्षण है। तो ज्ञान कहने से सभी अनंत शक्तियां उसमें गर्भित हो गई, ज्ञान मात्र कहने से सब आ गए, परंतु वो राग उसमें नहीं सम्मिलित कर है जीव की पर्याय में, वो जीव का नहीं। तो जैसे जीव से राग न्यारा है, राग द्वेषादिक भाव जीव के स्वरूप में नहीं, स्वरूप शब्द डाला, उसके पर्याय में नहीं, ऐसा नहीं कहा। अगर पर्याय में भी नहीं होता तो जीव को दुखी होने का सवाल ही नहीं था। जीव है पर्याय में है, वो उसको अपना मान रहा है और उसको दुखी हो रहा है। प्रकट यद्यपि जीव में होते हैं, प्रकट कहाँ हो रहे हैं, कहाँ से वो तो पर्याय में आ रहे, तो जीव में। जीव के ही चारित्र गुण के विभाव परिणमन है किस पर भी, मात्र जीव के सत्व के कारण केवल जीव से ही यानी परनिमित्त हुए बिना यह व्यक्त हो जाता हो ऐसा तो है नहीं। क्या कहते हैं, जीव का सत्व का कारण यानी जीव का अपना अपनी स्वयं की शक्तियाँ, क्या ये जीव की शक्तियों से उत्पन्न हो रहा है, अकेले जीव से हो रहा है तो सिद्धों में भी होना चाहिए, तो कहते नहीं हो रहा है। परनिमित्त के बिना अकेले इससे नहीं हो रहा, तो क्या कर्म इसको करा रहा है, तो नहीं, ये स्वयं ही उस रूप परिणमित हो रहा है, ये इसका विभाव है चारित्र गुण का। देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ स्पष्ट बताया है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, एक बार कहते जीव का है, एक बार कहते जीव में नहीं है, एक बार कहते कि तो जीव राग करता है तो जीव स्वयं राग है, और एक बार कहते जीव राग उसका है ही नहीं, कैसे। तो ये सही रूप से उसको समझना चाहिए, है ना। प्रकट यद्यपि जीव में होते हैं, जीव के ही चारित्र गुण के विभाव परिणमन है, फिर भी यानी तिस पर भी, मात्र जीव के सत्व के कारण केवल जीव से ही यानी पर निमित्त हुए बिना यह व्यक्त हो जाता हो ऐसा तो है नहीं। कर्मों के उदय का निमित्त पाकर बाह्य पदार्थों को उपयोग में लेकर, देखो दोनों ही बातें बताएं, कर्मों का उदय है और बाह्य पदार्थों में उपयोग नहीं है, तो कहते ऐसा भी नहीं होगा, उसका उपयोग भी बाह्य पदार्थों में लगा है, क्योंकि वो तो व्यक्त हो रहे कर्मों के उदय से, परंतु ये किसी अन्य पदार्थ का लक्ष्य कर करके उसको वो राग द्वेष कर रहा है, ये रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं। ये रागादिक जीव के स्वरूप से भिन्न है, यानी भेद है जीव में और राग में, भिन्नता है, भेद है। लौकिक जनों की रागमयता निरख कर देख कर व्यामोही मानो मोही जीव, जीव का स्वरूप ही रागादिक जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं, हम एक दूसरे का वर्णन कैसे करें, बहुत लोभी है ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत मानी है, हम बिल्कुल उसको उस रूप से देखते हैं, यानी जीव को ही हम राग रूप मानते हैं, क्योंकि अपने को राग में देखते हैं तो दूसरों को भी राग में देखेंगे, अपने को शरीर रूप देखते हैं तो दूसरों को भी शरीर रूप से पहचानेंगे, जिसने अपने को जीव रूप से देखा तो दूसरे को भी जीव रूप से देखेगा, चैतन्य रूप से देखेगा। क्या कहते हैं, लौकिक जनों की रागमयता निरक्षर व्यामोही मानव, जीव का स्वरूप ही रागादिक जानते हैं, राग स्वभाव ही है जीव का, ये कौन मान रहा है, वो व्यामोही जीव, क्या वो स्वभाव ही मान रहा है जीव का, कोई जीव राग से रहित हो ही नहीं सकता, ऐसी श्रद्धा होना भेदाभेद विपर्य है। क्या कहा, भेदाभेद में कहाँ तक ले जाए, देखो ये रागादिक जीव का स्वरूप मान लिया, यही भेदाभेद विपर्य, जीव का स्वभाव रागादिक है, राग से रहित कोई हो ही नहीं सकता, ऐसी श्रद्धा होना भेदाभेद विपर्य है। राग मंद हो जाए इसे लोग मोक्ष बोलते हैं, वैकुंठ बोलते हैं। अन्य मति गए थे स्वर्ग में गए तो वैकुंठ में गए। ऐसे विपरीत सिद्धांत की बात सुनाई जा रही है, वहाँ राग भीतर मंद पड़ा रहता है, जब समय पूरा हो जाता है तब राग उमड़ता है। क्या कहते हैं, कभी कभी जो मंद राग हो जाना वो तो कायम के लिए मंदता नहीं रहेगी, कभी मंद तीव्र हो चला जाता है क्योंकि कर्म का उदय भी ऐसा नहीं है, जीव के परिणाम भी ऐसा नहीं है। जरा इसको देखो, ऐसे इस विपरीत सिद्धांत की बात सुनाई जा रही, वहाँ राग भीतर मंद पड़ा रहता है, जब समय पूरा हो जाता है तब राग उमड़ता है, कुछ काल के लिए वो मंद है बाद में वो तो फिर तीव्र हो जाएगा, इसे वहां से पटक कर फिर संसार की योनियों में पैदा कराता है। फिर कभी तपस्या करे राग मंद हो जाए तो फिर वह वैकुंठ पहुंच जाता है। देखो वैकुंठ ने स्वर्ग में चला जाता है। मंद राग से कितने अनंतों बार स्वर्ग के बहु पाए, मंद राग से चला जाता है, और वहां तो देखा ना हमने तो वहां तो वैकुंठ तक चला जाता है, या तो एक इंद्र में जाएगा या पंचेंद्रिय तीरेंच मनुष्य में आएगा। तो कितने ऐसा वर्णन सुना मैंने, कहाँ इसी में पढ़ा होगा शायद, कि देवों के पहले पता चलता है 6 महीने अभी आयु पूरी होनी है और मिथ्या दृष्टि है, ये भवनवासी और चौधर मिशन की बात करें तो क्या सोचते हैं, अवधि ज्ञान से जानते हैं कि अभी माता के पेट में वो 9 महीना ऐसे वो मांस और ये सब गंदगी है पेट में क्या क्या होता है वो तो जानेंगे ना अवधि ज्ञान से, उसमें उल्टा लटक के रखना पड़ेगा अभी 9 महीने तक, तो उनका वो घृणा आती है उसको, क्योंकि वहाँ तो दिव्य शरीर आदि थे, अब ऐसी गंदगी में ऐसे मांस में खून और लोही और ये सब उसमें ऐसा पड़ा रहना तो उनको वो तो घृणा आती है। तो उससे अच्छा वो कोई हीरा माणिक हो जाए तो अच्छा है, कोई फूल बन जाए तो अच्छा है, एक इंद्री में चले जाते हैं। या कहते वैकुंठ पहुंच जाता है, इस तरह वैकुंठ और संसार कुंठ इनमें ही भ्रम होता रहता है। हाँ, क्योंकि राग को उन्होंने अभिन्न माना है, इतनी तपस्या करके भी वो लोग पूछते ना इतना सब किया, हाँ बिल्कुल जैसे आचार अंग में बताया वैसे दिगंबर मुनि धर्म अंगीकार किया है, वैसे आचार पाल रहे, तो कहाँ कहाँ क्या रह गया, बाकी क्या रह गया, राग को अभिन्न माना, ये शुभ राग में धर्म माना और वो मेरा स्वरूप है माना, बस इतनी भूल हो गई। तो जो चीज भिन्न है उसे आत्मा से अभिन्न मान लेना यह भेदाभेद विपर्य है। ये शरीर ही मैं हूं और शरीर की क्रिया मेरी क्रिया है, ये मानना क्या है, भिन्न को मैंने अभिन्न मान लिया, शरीर बिल्कुल जुदा है उससे, मेरे से कोई लगाव नहीं उसका, फिर भी इसी इस रूप मैं हूँ मान लिया, उस मैं के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अभी यही रुकते, आगे का पैराग्राफ बड़ा है ना, जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत।